भाइयों को और बहनों, कल तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा गो सेवा के बारे में सुनाया था। आज तो उस गौशाला में जो मैंने कहा था आपको, इस तरह से वो काम चल रहा होगा या तो अभी बंद हुआ होगा। उसमें मैंने एक बात को छोड़ दी थी, लेकिन क्योंकि इतना वक्त नहीं लेना चाहता था, आज वो कह दूँ अच्छा है कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत दुग्धालय चलते हैं, अभी भी चलते हैं। वो मुझको पता नहीं था, वो तो परसों मुझको राजेंद्र बाबू ने सुनाया तब पता चला। वो दुग्धालय क्या थे, वो तो जब यहाँ मिलिटरी थी तो अंग्रेज लोग भी तो सोल्जर पड़े थे, उनके लिए दूध चाहिए और सब चीज़ चाहिए, तो वो डेरियाँ चलती थी। वो एक एक डेरी सैकड़ों एकड़ ज़मीन, मैं तो कहना चाहता था हजारों, शायद उसमें अतिशयोक्ति हो, लेकिन सैकड़ों एकड़ ज़मीन तो रोक लेती थी, उसकी तो परवाह नहीं। उसमें गायें भैंस भी रहती थी, बैल भी अच्छे रहते थे और बहुत खूबसूरत गायें वहाँ रहती थी। मैंने देखी एक गाय तो बेंगलोर में ऐसी देखी कि जो सारे एशिया में सबसे ज़्यादा दूध देती थी। मेरा ख्याल है, भूल सकता हूँ, कि 75 लीटर दूध देती थी। 75 लीटर दूध तो हो, बड़ी बात हो गई। गाय को मैंने देखा, उसकी फोटोग्राफ लेते थे, मालवीय जी महाराज ने उसको देखा था और वो तो बहुत खुश हो गए थे। वो गाय को बांधते ही नहीं थे, जिस जगह पे उसको घूमना है वो घूम सकती थी, और इतना दूध का बोझ लेकर बहुत कि घूम भी नहीं सकती है गायें, लेकिन घूमती थी। और उसके लिए चारा के लिए हर जगह पे रखा था, वो एक गाय के लिए, क्योंकि वो तो सबको सब 75 लीटर दूध देने वाली गाय रहती है तो उसको सब मिलेगा ये खुराक, तो इस तरह से रखती थी। लेकिन उसका जो सामना चित्र है वो बहुत भयानक है। जो बछड़े रहते थे, तो बछड़े तो सबके सब बछड़े अगर रहें तो उस बछड़ों को क्या करें, वो तो पीछे उसकी संख्या बहुत बढ़ जाए, उसके बैल बनाना वो भी मुश्किल की बात है, उनको तो किसी न किसी तरह से दूर चाहिए, तो बछड़ों को मार देते थे। और भैंस के जो प्रजा रहती थी उसको तो अगर वो बछड़ा है तो उसको मारना ही है, इस तरह से चलता था। लेकिन वो तो हम सब सहन करते थे, कोई जानते नहीं थे, ऐसा नहीं था, लेकिन दबी जबान से बोल सकते हैं इस बारे में, दबी कलम से लिख सकते थे, बहुत नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से चलता था। और इतनी ज़मीन वो भी उसमें चली जाती थी। अभी वही चीज़ जिसमें करोड़ों रुपया मेरी निगाह में करीब करीब बर्बाद सब तो नहीं होते हैं, लेकिन होते हैं। तो आज तो हमारे पास जो सोल्जर हैं वो तो हमारे ही हैं, उनके लिए वो सब ज़रूरत हो नहीं सकती है, उनके लिए इतना खर्च होना नहीं चाहिए, तो वो अगर बच जाए, और इतने बछड़े वगैरह को मारा जाता है वो सब बच जाए, तो कितनी हत्या में से हम बच जाते हैं। और वो तो हुकूमत का काम है, बाकी बात तो चल रही है गाय को बचाने का, कि सारे हिंदुस्तान में कानून करो, वो तो कानून चल नहीं सकता है। हिंदू तो जैसे आज निर्दय हैं और कमज़ोर हैं, कोई उसका शास्त्र का अभ्यास नहीं करते, ऐसे रहें, इस तरह से चलता है। तो इस सिलसिले में मैं जानता हूँ कि कल भी मैंने इशारा तो किया था कि सबसे बड़ा पुस्तक हिंदुस्तान में तो सतीश चंद्र दास गुप्त का है, उनको मैं तो मेरे ही साथी है, मेरे साथ काम करने वाले हैं तो जानता हूँ। वो पुस्तक मैंने तो पढ़ लिया है, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया में गाय की कीमत क्या की जाती है, भैंस की क्या है, और भैंस और गाय का मुकाबला किया है, उसमें भी गाय कितनी बढ़ जाती है, कितना काम हमको देती है, उसके उसमें से जो बेल पैदा होते हैं वो सब चाहिए, भैंस में से सारी भैंस की जो प्रजा है वो हमको खेतों में काम नहीं आता है। आता है, एक जगह ऐसी है कोंकण है वहाँ भैंस काम कर सकती है, लेकिन तो इससे पीछे उसके पारे देते हैं वो भी काम करें, उसी जगह पे वो चलता नहीं है। और जिस जगह पे चलता मैंने देखा है उसको बेल के जैसे इस्तेमाल करते हैं तो बुरी हालत उसको होती है, क्योंकि वो पैदा नहीं हुए ऐसे। कोंकण में चलता है क्योंकि वहाँ तो एक शिकल ही दूसरी है, अगर खेती करनी है तो उसे बेल काम नहीं करे, इतना वो पारे हैं वो काम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ वो बैर है वो जमीन में घुस जाते हैं, ऐसी जमीन पड़ी है, बहुत फल रूप है लेकिन ऐसी है, वो छोटा सा मुल्क है, वो कोई कोंकण की जमीन हर जगह पे है ही नहीं, वहाँ चलता है, ऐसी कोई दूसरी भी जगह हो। लेकिन जब हिंदुस्तान सारा का ये हम ख्याल करते हैं तो सिवाय बेल के हमारा काम नहीं चल सकता है। गाड़ी चलानी है तो बेल, देहातों के लिए, देहातियों को हवा जहाज नहीं मिलते हैं, उनके लिए घोड़ा गाड़ी नहीं है, उनके लिए मोटर नहीं है, उनके लिए तो बेल ही है, तो बेल गाड़ी में जाते हैं आते हैं सब हैं, तो वो सब बड़ी खूबसूरती से सतीश बाबू ने बताया है। मेरी सलाह है कि वो पुस्तक आप लोग सब पैदा करें, उसका हिंदुस्तानी हो गया है, उसको आप देखें, उसका बंगला भी हो गया है और काफ़ी तादाद में वो चीज़ चली गई है। उसको सुनाया था जब मैं नौखाली में था तब सतीश बाबू ने, वो सब चीज़ें तो खप गई, अभी तो दूसरी आवृत्ति निकालने की चेष्टा करते हैं, ऐसा उसको कुछ कहते थे। तो वो एक बात है आपको कहने की। अभी एक भाई लिखते हैं उसको के हिंदू कौन और उसका हिंदू धर्म जो कहें तो उसका अर्थ भी क्या होता है, ऐसी कोई चीज़ है क्या? अगर हिंदू नहीं है तो वैसे हिंदू धर्म नहीं है, लेकिन हिंदू है तो सही, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है और आजकल की चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ ऐसा है, वैदिक काल को देखें तो उसमें हिंदू शब्द नहीं था, हिंदू शब्द तो ऐसा कहते हैं, मैं तो कोई इतिहासकार नहीं हूँ, एक बड़ी हुई बात सुनाता हूँ। कहते हैं कि जब वो मुसलमानों का आक्रमण हुआ और उसके पहले सिकंदर का, तो बादशाह सिकंदर वो तो बड़ा लड़ने वाला आदमी था, तो उसमें पीछे उसके साथ तो ग्रीस के लोग वो इतिहासकार रहते थे, वो सब बड़े चतुर थे वो तो, और वो तो हिंदू तो सिंधु और हिंदू एक ही बात हो गई, और ग्रीक में स के बदले में ह आ जाता है तो वो सिंधु का हिंदू हो गया, तो वो तो नदी का नाम है, तो नदी के इस पार जो रहने वाले हैं वो हिंदू बने, वो सिंधु नदी के नाम पर से इस तरह से नाम हुआ। तो इस पार जो रहते हैं सिंधु नदी के वो लोग हिंदू बने, और वही लोग जिस धर्म का पालन करते थे उस जमाने में वो हिंदू का धर्म, और उस जमाने में तो हिंदुस्तान में हिंदू का स्थान, उसमें सिर्फ हिंदू नहीं रहते थे, उसमें तो वैसे दूसरे तीसरे लोग भी रह जाते थे, और वो लोग भी इसमें मिश्र हो गए, तो वो उसका धर्म वो हिंदू धर्म बना। तो उस जमाने में तो हमने तो बड़ा काम कर लिया था, अभी वो सिकंदर बादशाह आ गया उस जमाने में था कि नहीं वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, शायद नहीं, लेकिन बाद में वो हिंदुस्तान और इसमें जो सिंधु नदी के इस बगल रहते हैं वो हिंदू, उसका धर्म, तो उसका धर्म क्या था उस वक़्त, तो पीछे आर्य समाजों ने बताया कि हिंदू नाम ही हमारे लिए नहीं है, वो तो दूसरे देते हैं, इससे क्या हुआ, तो हमारा नाम आर्य है, तो इसलिए पीछे आर्य धर्म हुआ, और इसका नाम क्या हुआ, आर्यव्रत, के आर्य लोगों का जो देश वो आर्यव्रत, वो चला कुमारिका से तो उत्तर तक कश्मीर तक, और वहाँ से कराची से तो डिब्रूगढ़ तक वो आर्यव्रत बना, वो एक पुराना हिंदू धर्म को छोड़े तो, लेकिन पीछे हम देखते हैं इतिहास को तो ये हो जाता है कि हिंदू धर्म और आदमियों का धर्म वो एक ही चीज है, लेकिन ये कहो कि उन सब धर्म वो धर्म की जड़ वो वेद है और वेद में से पीछे दूसरी चीजें तो बनी हुई, उपनिषद तो है ही है, पुराण है ही है, और वो पीछे दूसरी चीजें बनी, उसमें से जो बना है वो धर्म है। तो उस धर्म में किसी का मेरी निगाह में न द्वेष है, न किसी के साथ रोष है, न लड़ाई है, न कुछ है। तो हिंदू नाम भी है, खासा नाम है, आज तो मेरी निगाह में और मुझको तो बड़ा प्रिय नाम है, क्यों नहीं। हम जिसमें सब मिश्रण हो गया है सर्वथा, वो पीछे शुद्ध वैदिक धर्म कहो, लेकिन शुद्ध वैदिक धर्म है ही कहाँ, और वो आपको मैं सुनाना शुरू करूँ तो पीछे बहुत लंबी चोली बात मुझको करना चाहिए और उसमें जाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म जो है उसमें तो बहुत सी मिश्रण हो गए, बहुत चीजें मिल गई, तो वो तो एक बड़ा दरिया बन गया। उस दरिया को हम संकुचित किसी हालत में न करें, वो मेरा प्रयत्न रहा है। जहाँ तो मैं बातें करता हूँ उसमें से, तो वो भाई ने जो पूछा है उसका मैंने आप लोगों को तो उत्तर दे दिया। तो मेरा ये मानना है, वो समझ लें वो भाई और दूसरे हैं, कि हिंदू धर्म है, वो हिंदू धर्म मेरी उम्मीद है कि जहाँ तक सूर्य चंद्र है वहाँ तक वो रहने वाला है। वो मेरी उम्मीद बर्बाद हो सकती अगर हम बाजी बन जाए, हम बस हिंसामय बन जाए, हम शराबी बने, व्यभिचारी बने, तो कोई धर्म के रक्षक तो वो तो नहीं हो सकते। और जब धर्मी न रहे तो धर्म कहाँ रहेगा। धर्म को तो धर्मी का अवलंबन होना ही चाहिए, सिवाय वो कोई हवाई चीज थोड़ी है। धर्म के हवा में भरा है वो धर्म है, वो नहीं है। जब वो धर्मी रहते हैं, उसको पालन करने वाले, वो उस धर्म का पालन करते हैं। पीछे वो है, उसका नाम हिंदू है तो हिंदू धर्म हो जाता है, उसका कोई दूसरा नाम निकालो तो वो होता है, वो धर्म है। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि हिंदू जाति भी है, हिंदू धर्म भी है, उसमें क्या है वो मैंने कहा, तुलसीदास में क्या कहूँगा। तो उसने तो ये कहा ना कि दया धर्म का मूल है, देह मूल अभिमान, तुलसी दया न छांडिए जब तक घट में प्राण। वो धर्म है हमारा, दूसरा धर्म में पहचान तो नहीं हो, उसको कोई पहचानने की दरकार भी नहीं है कि दूसरा धर्म इससे क्या बड़ा हो सकता है, ये हमारा धर्म है। अब एक वो कल मैंने बात की थी, तो ऐसा एक सिलसिला बन गया कि मैंने तो कहा कि वहाँ तो अच्छा है, वो स्वच्छ है, ओखला में, ओखला के कैंप के लिए मैंने नहीं कहा, वो कैंप की बात कर रहा था, उसमें मैंने कहा कि हमारे में ऐसी बुराइयाँ भी आ गई है, तो बुराइयाँ भी बता दी थी। तो वो कहने का मतलब नहीं था कि ओखला में है, लेकिन वो जो आश्रित लोग हैं उनमें ये बुराइयाँ हैं। तो मेरे को काफ़ी ऐसी शिविर को, ऐसी कैंपों को जानता हूँ ना, तो वो इसके लिए एक है, दूसरी के कैंप के लिए दूसरा है, तीसरी कैंप के लिए दूसरा है, तो उसमें लेकिन वो चीज़ चलती है, इसमें शक नहीं है। वो ओखला में हो ना हो, इससे हमें क्या दरकार है। और मैं तो कहूँगा कि इससे किसी को भयग्रस्त होने की या तो चिंता मानने की भी जरूरत तो नहीं रह जाती है। अभी ये यहाँ दिल्ली में एक दफे तो मैंने आपको कहा था कि हम हिंदू धर्म को सुरक्षित नहीं रख सकेंगे अगर हिंदू ऐसा करें कि चलो हम मस्जिदों को उठा दें, क्योंकि मुसलमान मंदिरों को उठाते हैं। उसमें तो मेरे दिल में संदेह नहीं, मुसलमानों से मैंने काफ़ी झगड़ा भी किया है कि क्या इस्लाम को आप बचा सकते हैं, हिंदू ने कोई गुनाह किया है कि वो ईश्वर को मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो ईश्वर पूर्व में पूजा करते हैं, आप लोग पश्चिम में करते हैं, वो पश्चिम पूर्व वो भी तो एक सापेक्ष शब्द है। एक जगह पे बैठो और काबा का ख्याल करो तो वहाँ से काबा पश्चिम है, वही काबा पूर्व में चला जाएगा अगर उस बगल बैठो तो वही कहें कि यूरोप में लोग रहते हैं तो यूरोप के लोग काबा को कहाँ से पूजेंगे, पश्चिम से पूजेंगे, तो क्या वहाँ भी पूर्व में रहेंगे? नहीं, पूर्व में रहेगा तो पश्चिम में काबा नहीं है, अगर पश्चिम में पूजा करते हैं तो रोबेशा अमेरिका आ जाता है, ऐसी बात घटना ऐसी है। लेकिन हाँ, तो हम तो पूर्व में रहते हैं ना, पूर्व में रहते हैं इसलिए काबा वहाँ है। तो हम हमारा तो ऐसा है गए ना कि अच्छा सूर्य जिस ओर है इस ओर पूजा करो, तो हम करते हैं, तो इसलिए कोई हिंदू ने गुनाह किया? या तो मैं जिसमें पूजा करता हूँ उसका नाम मंदिर है और वहाँ मैं मूर्तियाँ रखता हूँ, लेकिन मूर्तियों की पूजा नहीं करता हूँ, मूर्तियों के मार्फत भगवान की मैं पूजा करता हूँ, तो मैं गुनाह करता हूँ क्या? लेकिन मानो एक वक्त कि वो पत्थर है वही मेरा भगवान हो गया है, तो उसमें आपको क्या करना है? और आपको ऐसा कहाँ सिखाया है कि जो मैं पत्थर की पूजा करता हूँ इसलिए आप पत्थर को वहाँ से फेंक ले कहीं भी, या तो पत्थर को पलीट करें या तो मुझको मार डालें, वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम उसका तो नाम ही ये है कि शांति का धर्म है, उसको इस तरह से गुंडा का धर्म क्यों बनाते हैं? तो वो मैं किस मुँह से कहूँगा एक हिंदू की हैसियत से मुसलमानों को, अगर मैं उनकी मस्जिद है वो सबको ढाला लूँ? अरे ऐसा हमने किया और यहाँ दिल्ली में हो सकता है क्या? होने वाली बात नहीं, लेकिन हमने कर ली है। मेरे प्यास तो संख्या तो आ गई है शायद 137 मस्जिद है, किसी को हमने थोड़ा तोड़ डाला है, किसी को भ्रष्ट किया है और किसी का मंदिर बनाया है। मैं कहता हूँ वो तीनों पाप है। और अभी तो मैं पाता हूँ, मुझको पता नहीं था कि कॉनेट प्लेस के नज़दीक एक मस्जिद थी, खासी मस्जिद रही, उस मस्जिद का मंदिर बनाया है, वहाँ तिरंगी झंडा चलता है और बस एक बड़ी मूर्ति बिठा दी है,